समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है।
Do not pretend, be. Do not promise, act. Do not dream, realize. A truly inspirational quote by the mother.
जी हाँ, इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी की एफएम गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम में एक नई सुबह के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवनीत सिंह। नवनीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज and the Akashvani Network. We bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 17th of November. So let's begin with the headlines, Mukesh.
Ji haan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबुजा में आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से वार्ता करेंगे। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा भी करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारत और नाइजीरिया वर्ष 2007 से ही रणनीतिक साझेदार रहे हैं। नाइजीरिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने 27 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में 18 नवंबर को ब्राजील जाएंगे। श्री मोदी ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 19 से 21 नवंबर तक गयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के मराठी समुदाय की अपनी संस्कृति और भारत से जुड़े रहने के लिए प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नाइजीरिया में मराठी समुदाय ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भारत के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण एलन मस्क के स्पेस एक्स से मंगलवार को अमरीका के केप कैनावेरल में किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि स्पेस एक्स का फाल्कन 9 19 नवंबर को इसरो के GSAT-20 का प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह 14 वर्षों तक कार्य करेगा। ये दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित पूरे भारत में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करेगा। 4,700 किलोग्राम वजन का GSAT-20 भारत के सबसे भारी संचार उपग्रहों में से एक है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राधाकृष्णन दुरईराज ने कहा कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर इतने भारी उपग्रह का प्रक्षेपण करने के लिए इसरो को एक अच्छा सौदा मिला है। भारत अब तक ऐसे भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए फ्रांस के एरियन स्पेस पर निर्भर था। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट 8,300 किलोग्राम यानी 8 टन के पेलोड का प्रक्षेपण कर सकता है।
कैंपेनिंग फॉर असेंबली इलेक्शंस हैज रीच्ड इट्स पीक एज ओनली 2 डेज हैव बीन लेफ्ट फॉर कैनवासिंग टू एंड। लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज आर क्रिस क्रॉसिंग द स्टेट टू वू द वोटर्स इन महाराष्ट्र। इन ऑर्डर टू एनकरेज द वोटर्स टू एक्सरसाइज द फ्रेंचाइज ऑन वेंसडे, द इलेक्शन कमीशन इज मेकिंग एफर्ट्स थ्रू द सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप to create awareness about importance of voting. While in Jharkhand, campaigning for second phase of assembly elections will come to end tomorrow evening, leaders of various political parties are leaving no stone unturned to woo the voters. BJP President JP Nadda will address 3 poll rallies in Gomia, Sindri and Nala today. On the other hand, senior Jharkhand Mukti Morcha JMM leader and Chief Minister Hemant Soren is scheduled to address 6 rallies across the state. Congress leaders are also scheduled to address a series of meetings across the state. RJD leader Tejaswi Yadav will address gathering at Dhanbad. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the government's goal is to transform India into a developed nation with a vision that goes beyond vote bank politics. Addressing the gathering at the leadership summit organized by a media organization yesterday, Mr. Modi highlighted that the government is working with the mantra of progress for the people and by the people, underlining that when the people trust their government, the impact on the development is profound. Mr. Modi said that the government is following a model of development where investments drive employment and progress, ultimately enhancing the dignity of country's citizens.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप 3 को लागू करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे सटे राज्यों में प्रदूषण से प्राथमिकता से निपटने के निर्देश दिए हैं। ग्रैप 3 को कड़ाई से लागू कराने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। आयोग ने अधिकारियों से नागरिकों की सभी लंबित शिकायतों का समाधान एक सप्ताह में करने का निर्देश दिया। प्रदूषण नियंत्रण पर निगरानी के लिए सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को विभिन्न एजेंसियों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ तालमेल रखने को भी कहा गया है। आयोग ने ग्रैप 3 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के बारे में दैनिक स्तर पर सूचित करने का भी निर्देश दिया।
In the US, President-elect Donald Trump announced Chris Wright as his choice to head the Department of Energy. Wright, the founder and CEO of Liberty Energy, is a vocal supporter of fossil fuel use and is expected to align with Trump's goals of maximizing oil and gas production. Beyond production, Wright is likely to echo Trump's skepticism towards international climate change efforts. Known for dismissing climate change concerns as exaggerated, Wright has notably compared attempts to tackle global warming to Soviet-style communism, insisting that no energy transition is currently underway.
चीन में जियांगसू प्रांत के व्यावसायिक स्कूल में एक हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है और 17 अन्य घायल हुए हैं। ये हमला हिक्सिंग शहर में कल शाम 6:30 बजे के करीब हुआ। घटनास्थल से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चीन में इस सप्ताह इस प्रकार का ये दूसरा हमला है।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेमेन बस डिपो सखी डिपो इन सरोजनी नगर। द डिपो हैज अ टोटल वर्कफोर्स ऑफ 223 वेमेन इंक्लूडिंग 89 ड्राइवर्स एंड 134 कंडक्टर्स। द डिपो ऑपरेट्स 70 बसेस इंक्लूडिंग 40 एयर कंडीशनड एंड 30 नॉन एयर कंडीशनड बसेस। Speaking on the occasion, Mr. Gehlot said that Delhi government aims to set up many such depots across the city under the Sakhi initiative. He said that the Sakhi depot is a new chapter towards women empowerment in the public transport sector.
और श्रोताओं, आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले चेन्नई की खबरें सुने।
Yes, Mukesh, let's head to Chennai. 10 firefighters from Tamil Nadu Fire and Rescue Services are practicing parkour as part of their training. The co-founder of Chennai Parkour, Vignesh Raghavan, said that it is the practice of traversing obstacles in man-made or natural environments by running, vaulting, jumping, climbing, rolling, and other movements. Robin Castro, District Fire Officer, Chennai, said that he was keen on his team learning the art of parkour. He said that this would help in situations where buildings lack access and the training was invaluable. The 16th Finance Commission will be on a two-day visit to Tamil Nadu. The team will visit Chennai, Chengalpet, Kanchipuram, Madurai, Ramanathapuram and Sivagangai districts. The commission was constituted on 31st December last year. The terms of reference of the commission are limited to Article 280 of the Constitution. These include the sharing of centres' tax revenue to states, determining the share of each state in the divisible pool of central taxes, recommending grants in aid to states which need assistance, and recommending measures to augment the consolidated fund of state. Over to you, Mukesh.
जी हाँ, चलते हैं मुंबई। और मुंबई की खबरों में, मध्य रेलवे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 19 से 21 नवंबर के बीच मतदान कर्मियों और जनता की सुविधा के लिए विशेष उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां मेल लाइन और हार्बर लाइन पर चलेंगी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल के बीच सभी स्टेशन पर रुकेंगी। नवी मुंबई नगर निगम आयुक्त कैलाश शिंदे ने कल नवी मुंबई के लोगों से 20 नवंबर को मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र की हर हाउसिंग सोसाइटी में QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को मतदान केंद्र के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि हर मतदान केंद्र पर पीने का पानी, बैठने के लिए बेंच, पार्किंग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग और बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मतदाता जागरूकता के लिए कल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली मलाड पश्चिम, गोरेगांव, अंधेरी पूर्व और अंधेरी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्रों से होकर गुजरी। मतदान बढ़ाने के उद्देश्य से मुंबई में विभिन्न गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। और नवनीत, आप बताएं कि हैदराबाद की क्या खबरें हैं?
Yes, Mukesh. In Telangana, over 5,36,000 candidates are set to appear for the Group 3 Services recruitment examinations being conducted by the Telangana Public Services Commission, TGPSC, today and tomorrow. The exams will be conducted in over 1,400 centers across the state in two sessions each day. Candidates will be permitted into the center 1.5 hours ahead of the exam, and gates will be closed 30 minutes before. As many as 13,075 Group 3 posts have been notified by the TGPSC. The examination comprises papers to assess the candidate's knowledge in general studies and general abilities, history, polity and society, and economy and development.
और चलते हैं कोलकाता। कोलकाता पुलिस स्कूल का समय शुरू होने और छुट्टी होने के समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। हाल ही में सॉल्ट लेक स्टेडियम इलाके में एक घटना में दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद 11 वर्षीय स्कूली बच्चे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कोलकाता पुलिस ने पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को शहर के स्कूलों में राज्य सरकार की सेव ड्राइव सेफ लाइफ योजना का प्रचार करने का आदेश दिया है। इस अभियान में स्कूली बच्चों, कार मालिकों और ड्राइवरों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सर्जेंट और पुलिस कर्मियों को अधिक सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है। कोलकाता पुलिस ने निजी बस मालिकों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों की खिड़कियों पर काली फिल्म और पर्दे का इस्तेमाल न करने को कहा है।
And Mukesh, in some news updates from Bengaluru, Karnataka Information Technology Minister Priyank Kharge has informed that Chief Minister Siddaramaiya will inaugurate the 27th Bengaluru Tech Summit on 19th November. Addressing media persons in the city, the minister said that the 3 days conclave will have delegation from 15 countries along with 33 Global Innovation Alliance countries. For the first time, startups will have access to venture capitalists. Over 300 startups have already identified 100 venture capitalists for engagement during the summit. Australia is the official country partner. Karnataka Information Technology Minister Priyank Kharge has informed that Chief Minister Siddaramaiah will inaugurate the 27th Bengaluru Tech Summit on 19th November.
और अब रुख करते हैं दिल्ली की खबरों का। दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इंद्रपुरी के रेलवे हॉल्ट पर फुट ओवर ब्रिज का कल शिलान्यास किया। श्री रवनीत ने बताया कि यहां पर बने 58 साल पुराने ब्रिज की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, इसलिए रेलवे यहां पर 7 करोड़ रुपए की लागत से नया फुट ओवर ब्रिज बना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आभार व्यक्त किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में बढ़ते अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल की कार्रवाई का निर्देश देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने शहर में बढ़ते अवैध प्रवासियों पर चिंता व्यक्त की। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए व्यापारियों और अन्य संगठनों ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों के अवैध अतिक्रमण की शिकायतें की हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों में सामाजिक जागरूकता और उनके समग्र विकास के लिए प्रतिदिन एक शपथ दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस नई पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। विभाग ने बताया कि कार्यक्रम दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक अनूठा प्रयास है। और नवनीत खिल समाचारों की बातें हो चुकी हैं, राष्ट्रीय समाचार हो गए, अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार हो गए, अब बारी खेल जगत की रहती है। तो खेल जगत की हलचल की तमाम जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुकी हैं हमारी सहयोगी जया। जया, आप बताएं कि खेल खबरों की शुरुआत कहां से कर रहे हैं?
जी मुकेश, खेल खबरों की शुरुआत करते हैं हॉकी से। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत आज जापान से खेलेगा। यह मैच बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 4:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने चीन को 3-0 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारत 4 मैचों में 12 अंक के साथ पहले नंबर पर है। उधर जापान ने अपने पिछले मैच में मलेशिया को 2-1 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी पहली जीत दर्ज की। कोरिया और थाईलैंड के खिलाफ उसका मैच ड्रॉ रहा, जबकि चीन से उसे हार का सामना करना पड़ा। अन्य मैचों में चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से और मलेशिया का सामना थाईलैंड से होगा। उधर उड़ीसा ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उड़ीसा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। चेन्नई में उड़ीसा के लिए शैलेंद्र लाकरा ने हैट्रिक लगाई। उनके 3 गोल के अलावा रजत आकाश तिर्की और प्रताप लाकरा ने 1-1 गोल किया। उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश के लिए कप्तान ललित कुमार उपाध्याय और राजकुमार पाल गोल स्कोरर रहे। वहीं मणिपुर के लिए एकमात्र गोल मायरंथम रविचंद्रन ने किया। उधर टेलर फ्रिट्ज एटीपी वर्ल्ड टेनिस के फाइनल में पहुंच गए हैं। इटली के ट्यूरिन में सेमीफाइनल में फ्रिट्ज ने विश्व की दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 3-6, 7-6 से हराया। टेलर फ्रिट्ज 2006 में जेम्स ब्लेक के बाद फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाले पहले अमरीकी बन गए हैं। सेमीफाइनल में फ्रिट्ज का मुकाबला इटली के जानिक सेनर और नार्वे के कैस्पर रूट के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं दुनिया के महानतम मुक्केबाजों में शामिल माइक टाइसन को 27 साल के मुक्केबाज जेक पॉल ने ऐतिहासिक मुकाबले में हरा दिया है। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे 58 साल के माइक टाइसन 19 साल बाद रिंग में उतरे थे। और आज खेल खबरों में बस इतना ही।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और नवनीत सिंह के साथ। कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो दिल्ली का मौसम सबसे पहले जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज आमतौर पर मौसम जो है वो साफ रहेगा, कहीं कहीं प्रदूषण के कारण घना कोहरा छाया रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता का रुख करें तो कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई चलते हैं, मुंबई में सवेरे कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये हुई बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। आप बताएं नवनीत कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहने वाला मौसम?
यस मुकेश, लेट्स गेट सम अपडेट ऑन वेदर फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 25 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Bengaluru is also expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 20 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius. That's all we have in the weather updates, Mukesh.
बिल्कुल। और नवनीत, अब समय हो चला है कि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो आज के दिन इतिहास का हिस्सा बन गई। आज 17 नवंबर है, आज ही के दिन 1869 में इंग्लैंड के जेम्स मूरी ने 13,000 किलोमीटर लंबी पहली साइकिल रेस जीती थी।
17th November is nationally observed as Epilepsy Day. The day aims to break stigma, raise awareness, and support millions living with epilepsy. Today, we'll not only break down the myths surrounding epilepsy, but also celebrate the courage of those living with it. Mukesh, generally in our society, there are a lot of myths surrounding epilepsy. So let's have a look at some of the myths so that we can make things clear for our listeners. Myth number one, epilepsy is a life sentence. No, it is not a life sentence. Epilepsy can be treated with anti-seizure medications. Epilepsy is a mental illness. No, it cannot be mistaken for mental illness. It is a peculiar disease which can be treated with medication. There is also a myth that you cannot drive if you have epilepsy. no, you can certainly drive if you are in touch with your doctor and having medications. All right, Mukesh, let's move on.
जी हाँ, 1932 में आज ही के दिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी. 1933 की बात करें तो आज ही के दिन अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता देते हुए व्यापार के लिए सहमति व्यक्त की थी.
Mukesh, today also is the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Every year, the third Sunday of November is designated as World Day of Remembrance for Road Traffic Victims.
1966 की बात करें तो आज ही के दिन भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. मिस वर्ल्ड बनने वाली वो पहली एशियाई महिला बनी थी. 1970 में आज ही के दिन सोवियत अंतरिक्षयान लुनाखोद 1 चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था.
In 1558, a monumental shift in English history occurred. Queen Elizabeth I ascended to the throne, marking the beginning of the Elizabethan era. Her reign is celebrated for flourishing arts, exploration in England, a golden age indeed.
1999 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को यूनेस्को ने स्वीकृति प्रदान की थी.
In 1869, the Suez Canal officially opened in Egypt. This engineering marvel transformed global trade by providing a direct link between the Mediterranean and the Red Sea, significantly shortening the sea route between Europe and Asia.
2006 में आज ही के दिन अमेरिका की सीनेट ने भारत अमेरिका परमाणु संधि को मंजूरी दी थी. और अगर हम 2008 की बात करें तो आज ही के दिन चंद्रयान 1 की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने चंद्रयान 2 अभियान को स्वीकृति प्रदान की थी.
एंड इन पॉप कल्चर 2003 saw Arnold Schwarzenegger, the iconic actor and former bodybuilder, being elected as governor of California.
और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है. इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं देश के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को. आज उनकी पुण्यतिथि है. आजीवन ब्रिटिश राज का विरोध करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करने वाले लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है. लालाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे.
Yes, Mukesh, he was a nationalist, reformer and an author also. Rai was one of the prominent leaders of the Lal Bal Pal trio alongside Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal, advocating for Swaraj, that is self-rule.
बिल्कुल, उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त कर हिसार में वकालत आरंभ की थी, किंतु बाद में स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के बाद आर्य समाज के वे प्रबल समर्थक बन गए. यहीं से उनमें उग्र राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई. लाला जी को पंजाब में वही स्थान प्राप्त है जो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक को प्राप्त है. 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के भारत पहुंचने पर पूरे देश में विरोध की आग भड़की हुई थी. लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को बड़ी घटना घटी जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया. पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई. वे बुरी तरह घायल हुए और इस समय अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी.
Every blow on my body will prove a nail in the coffin of British rule.
जी हाँ, और इस चोट ने कितने ही उधम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए जिनके प्रयत्नों से हमें आजादी मिली. इस घटना के 17 दिन बाद यानी 17 नवंबर 1928 को लाला जी ने आखिरी सांस ली थी और सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी. और आज ही पुण्यतिथि है भारतीय थलसेना के जांबाज सैनिकों में से एक जसवंत सिंह रावत की. उत्तराखंड की पावन भूमि एक ओर धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान की स्थली रही है, ये वही भूमि है जहां पर अनेक वीर और वीरांगनाओं की जन्मस्थली है. 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत आज भी अमर हैं. 1962 के इस भयंकर युद्ध में 162 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे. 1264 को दुश्मनों ने कैद कर लिया था और 256 सैनिक बर्फीली हवाओं में तितर बितर हो गए थे.
It is also the death anniversary of Meera Alfasa, known to her followers as the Mother. She was a French-Indian spiritual guru, occultist and yoga teacher, and a collaborator of Sri Aurobindo, who considered her to be of equal yogic stature to him and called her by the name the Mother.
और आज ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की पुण्यतिथि है और वो भारतीय सेना के ऐसे वीर सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने लोंगेवाला के प्रसिद्ध युद्ध के लिए उन्हें जाना जाता है. उन्होंने लोंगावाला के युद्ध में भारतीय सेना का वीरता से नेतृत्व किया और जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में राजस्थान के लोंगावाला मोर्चे पर हुई लड़ाई का उन्हें हीरो माना जाता है। इस लड़ाई में कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगोवाला पोस्ट पर तैनात थे। सीमा पर पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट थी और चांदपुरी की कमांड में केवल 120 जवान थे। भारतीय फौज में शानदार सेवाओं के लिए उन्हें महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथियों को लोंगोवाला मोर्चे पर दिखाई गई बहादुरी पर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर बनाई गई थी। क्यों ना उसका एक गाना सुना जाए। घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। और हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के निर्देशक मोहन जी प्रसाद की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने कई फिल्में निर्देशित की हैं, उनमें राम बलराम, घर परिवार, औरत तेरी यही कहानी जैसी हिट फिल्मों को निर्देशित किया है और फिल्म औरत तेरी यही कहानी से मोहन जी प्रसाद ने फिल्म निर्देशन की शुरुआत की थी। तो क्यों ना इस फिल्म का गाना सुना जाए। और सिनेमा में उनका योगदान अतुलनीय है। फिल्म बड़े घर की बेटी से साल 1989 में मोहन जी प्रसाद ने लेखन करियर की शुरुआत की थी। भोजपुरी फिल्मों में उनका नाम बतौर निर्देशक काफी चर्चा में रहा है। तो उनकी भोजपुरी फिल्मों में एक जो फिल्म है गंगा जैसन माई हमार, रसिका बलमा, राम बलराम, हमारा सैया हिंदुस्तानी, इस तरह की कई फिल्में की हैं। तो क्यों ना ये गाना सुना जाए।
And let's not forget the birthdays, Mukesh. Today we celebrate the birthday of Ramaswamy Ganesan, better known by his stage name, Gemini Ganesan. He was an Indian actor who worked mainly in Tamil cinema. He was referred to as the Kadal Mannan, that is the king of romance, for his romantic roles in films. Kadal nilave kanmani radha nimmadiyaga thoonju kanavilum nane marubadi varuven kavalai illamal thoonju kadal nilave kanmani radha. And Mukesh, we are also celebrating the birthday of Kim Yugam, popularly known as Yugam. He is a South Korean singer, songwriter and dancer, best known as the youngest member of the globally acclaimed K-pop group GOT7. Let's listen to a soundtrack.
तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए। तो अनुमति दें मुकेश कुमार और नवनीत सिंह को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.